आज का प्रातः क्लास है 27/9/1967। अपन को आत्मा समझ करके बैठो, अर्थात देहाभिमान छोड़ करके बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझाए रहे हैं और समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा कहती है कि बाप सच कहते हैं, हम आत्मा कितनी बेसमझ बन गए। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमानी छोड़ दे अभिमानी में फंस मरा तो बेसमझ ठहरा। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ बन पड़े क्योंकि दे अभिमानी बन गए हैं। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो समझदार बन गए हैं और कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए। देह अभिमान में आए, ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते ही आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, समझ मिली है फिर भी बहुत पुरुषार्थ करना है क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन गए हैं। कोई भी गुण हमारी आत्मा में नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हो और ये बातें समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। नए अच्छे समझदार बनते जाते हैं और पुराने क्या तमो प्रधान बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जो समझदार बनते हैं उनकी निशानी क्या, वो औरों को भी समझदार बनावेंगे। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा, बेसमझ के बेसमझ ही रह गए। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम पुजारी बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। ऐसे नहीं कि पूरा लोप हो गया है, कोई न कोई आत्माएं हैं जो अभी भी आत्मिक स्टेज में रहने वाली हैं। देवी देवता सनातन धर्म का दुनिया में किसी को पता नहीं है क्योंकि प्रायः लोप हो गया है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत समझने की बातें हैं। क्या कि लक्ष्मी नारायण समझदार थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, तो हम भी समझदार थे, हम भी राज्य करते थे, ये कैसे? लक्ष्मी नारायण को एक ही राजा होंगे जो राज्य करते थे या हम सब राज्य करते थे? हाँ, वहां फर्स्ट जन्म की ये विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम, उनकी सारी प्रजा परिवार के मुआफिक थी। जैसे परिवार में कोई बच्चा होता है तो कहता है ये मेरी दुकान है, ये मेरा कारखाना है, ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे बाप का है, मेरा नहीं है। ऐसे अपनापन होता है आदि वाली डायनेस्टी में, सबको अपनापन होता है। इसलिए बोला ये बहुत समझने की बातें हैं। राजा और प्रजा में बाप और बच्चों का स्नेह होता था। इन बातों को सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। अभी तो तुमको महसूस होता है बाप ही ऊंचे हूं, समझदार थे, समझदार होगा। एक तो वो ज्ञान सागर भी है और सर्व का सदगति दाता भी है, पतितों को पावन बनाने वाला भी है। उस एक की ही महिमा है। कौन कौन सी महिमा? ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता और सब पतितों को पावन बनाने वाला। इतना ऊंच बाप, बच्चे बच्चे कह करके कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, इसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम 21 जन्म के लिए भविष्य में निरोगी बन जाते हो, तुम्हारे सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे और तुम इन दुखों से मुक्त होकर के मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सज्जन के पास एक ही दवाई है और एक ही इंजेक्शन आत्मा को आकर के लगाते हैं। ऐसे नहीं कि वह बैरिस्ट्री भी करेगा, इंजीनियरिंग भी करेगा, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे को ही लग जाते हैं। बाप को कहते भी हैं आय करके पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख बहुत है और पावन पने में सुख बहुत है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, सुख धाम को पावन दुनिया करेंगे, ये भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ शांति चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर ही नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं हम शांति में ही रहें, परंतु ये तो ला नहीं कहता कि आत्मा सदैव शांति धाम में रहे। अगर आत्मा सदैव शांति धाम में रहे तो कहेंगे पाठधारी ही नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं, जब एक्टर्स का पार्ट होगा तो बाहर स्टेज पर आए पार्ट बजावेंगे। ये बेहद की बातें हैं, बेहद के बाप ही आकर के समझाते हैं। आत्माओं का भी अपना अपना पार्ट है, अपने अपने टाइम पर आती है, इस रंगमंच पर पार्ट बजाती है। इन बातों को समझाने वाले को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है। अगर सर्व को पावन बनाने वाले तत्व ही नहीं हो तो उनको पतित पावन कौन कहेगा? पानी आदि ये सब तत्व हैं। ये तत्व तो सदगति नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जड़ है। ये भी समझाए, चैतन्य आत्मा ही पाठ बजाती है। ये बातें भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचे जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में और पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य कहा जाता है, पतित को पुजारी कहा जाता है। पावन उन्हें कहा जाता है जो कभी छींछी नहीं होते, पतित उन्हें कहा जाता है जो छींछी होते रहते, शक्ति छीन करते रहते। जो पतित होते हैं उनको पूज्य नहीं कह सकते। यहां इस दुनिया में पतित तो सभी हैं। तन से भी पतित, धन से भी पतित पने के काम करते और मन भी पतित पने के संकल्प चलाता है। कि पतित क्यों है? पतित इसलिए है कि पतित भ्रष्टाचारी कर्मेंद्रियों से पैदा होते हैं, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से तो पैदाइश होती नहीं है, वो तो देवताओं की होती है, वहां तो श्रेष्ठ होते हैं, वहां कोई भ्रष्ट कर्म करते ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों से गोते खाते ही नहीं, गाते भी हैं उनको संपूर्ण शिष्टाचारी। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा शिष्टाचारी बनना है, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनने में मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है, हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई अगर सच्चाई से चार्ट लिखते हैं तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। बाप तो बच्चों को एक ही ज्ञान देते हैं, मन मना भव। जो मेरे मन में संकल्प चलते हैं उन मेरे मन के संकल्पों में तुम समा जाओ और दूसरे कोई संकल्प न चले। अर्थात मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूं उस श्रीमत के अनुसार तुम्हारा मन चले, मन के संकल्प चले तो वाचा भी वैसी ही चलेगी और कर्मेंद्रियों से कर्मणा भी वैसी ही होगी। तुम अर्थ सहित कहते हो, मनमना भव, मत मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा, मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन्हीं संकल्पों में तू भी रमण कर। तो देखो कितना अर्थ सहित बताते हैं, बाकी तो सारी दुनिया अनर्थ में है। तुमको बाप अर्थ समझाते हैं कि मन मनाभव मध्याजी का अर्थ क्या है, मेरे मन के संकल्पों में रमण करेगा तो जो भी यजन करेगा अर्थात जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, वाचा से बोल बोलेगा, वो मेरे लिए ही बोलेगा। इसको कहेंगे मध्याजी भव। तो पहले मनमना भव, फिर मध्याजी भव। मेरे मन के संकल्पों के अनुकूल अपना मन बना देगा तो तेरे सारे कर्म मेरे लिए होंगे, सोचना भी मेरे लिए, बोलना भी मेरे लिए, और कर्म इंद्रियों से कर्म करना भी मेरे लिए होगा। मनुष्य लोग तो विद्वानों को बहुत ऊंच समझते हैं। जितना बड़ा विद्वान होगा बोला, जितना बड़ा विद्वान होगा उतना उनको सब नमन करते हैं, परंतु वो बड़े बड़े विद्वान कितना अनर्थ करते हैं। सत्ताईस नौ सड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब मेरी बहुत ग्लानी करते हैं। ग्लानी करते हैं तो अनर्थ करते हैं ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन, उनकी सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं। गायन भी है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सिर्फ भारत का ही नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। जहां आते हैं वहां बहुत ग्लानि होती है। भारत ही अकेला गांव थोड़े ही है, दूसरे भी तो इतने देश और इतने गांव हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते। खुद आते ही भारत में है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है। तुम किसी को कहो पत्थर बुद्धि तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप आते ही हैं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। कृष्ण तो है ही पारसनाथ, क्योंकि बच्चे से फिर बड़ा बनता है ना, ये किसी को पता नहीं है। इस समय कृष्ण पारसनाथ नहीं है, पारसपुरी भी तो नहीं है। पारसपुरी को गोल्डन एज कहा जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो। बाप से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कहते हैं, कुछ न कुछ जवाब देंगे, परंतु बाप कहते हैं कि प्रश्नों का जवाब देना मेरा कोई मुख्य काम नहीं है। मेरा मुख्य काम क्या है, मेरा मुख्य काम है पतितों को पावन बनाना। मुझे तुम बुलाते ही इसलिए हो, कहते हो हे पतित पावन आओ, आ करके पावन बनाओ, ये थोड़े ही कहते हो कि आकर ज्ञान सुनाओ या ज्ञान सुनाकर चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना कि चला गया, अब हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थे, आत्मा भी पावन थी। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि पावन बने तो उसमें संकल्प कैसे चलेंगे? पवित्र संकल्प ही चलेंगे। बुद्धि का काम है पवित्र फैसला लेना। बुद्धि परखती है तो परख शक्ति श्रेष्ठ होगी, निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी, तो कहेंगे कि आत्मा पावन है। परंतु अकेली आत्मा तो पावन नहीं होगी ना, आत्मा शरीर में रहती है ना, तो आत्मा के संग के रंग से शरीर भी पावन बनेगा ना। आत्मा है बीज और शरीर है झाड़, तो आत्मा शरीर सहित पावन चाहिए। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थे, अभी कलयुग अंत में आकर के आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख कहने से मनुष्य मुझ पड़े हैं, ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियां नहीं होती हैं, 84 लाख योनियां भी होती हैं, परंतु मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। 84 लाख योनियों में हो न सके। जैसा बीज वैसा झाड़, मनुष्य आत्मा रूपी बीज होगा तो मनुष्य का ही जन्म मिलेगा ना। देखो कितना बड़ा गपोड़ा लगाई दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आवे तो भी हम शास्त्रों का आधार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ना मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। तो उन विद्वान पंडित आचार्यों को बोलो कि तुम ब्रह्मा किनको कहते हो, वो ब्रह्मा कहाँ है और वो कौन सा ब्रह्मा है? तुमने कब ब्रह्मा को देखा है? उन ब्रह्मा का चित्र दिखावेंगे परंतु उनसे पूछे कौन? वो लोग इतने घमंडी होते हैं कि तुम पूछेंगे और वो गाली देने लग पड़ेंगे। वो तो हठयोगी हैं, दुर्वासा मिसल बहुत ही क्रोधी होते हैं, उनको देह का अहंकार बहुत रहता है, तो तो झट से क्रोध आ जाता है। वो देही अभिमानी हो ही नहीं सकते। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, एक बाप ही आकर के तुमको देही अभिमानी पना सिखाते हैं। अगर वो विद्वान पंडित आचार्य देही अभिमानी होते, आत्मा अभिमानी होते, तो वो बाप को सर्वव्यापी कभी नहीं कहते। देह अभिमान में आने के कारण बाप को सर्वव्यापी कह दिया और अपन को शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं कितने ठिककर बुद्धि बन गए। गवर्नमेंट के पास साधु समाज जाकर के कहते हैं गौ हत्या बंद करो। अब ये तो घाटे का सौदा है ना। इतने जानवर मरते हैं, कितना भोजन बचता है, कितनी उनकी हड्डियां निकाली जाती हैं, उनसे खाद बनती है, कितना चमड़ा निकलता है, लाखों की आमदनी होती है गवर्नमेंट को। इतनी बड़ी कमाई होती है तो ये गौ कोष बंद कैसे करेंगे। इन बातों को वो लोग समझ नहीं सकते हैं। वो लोग तो ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं। बाप कहते हैं ये ब्रह्म उनका ब्रह्म है। क्या वो ब्रह्म को भगवान समझते हैं? तुम क्या समझते हो? ब्रह्म तो एक जड़ तत्व है, जड़त्व बुद्धि वाली आत्मा है। आखिरी जन्म में आकर के जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है। तुम बच्चे पक्की पक्की आत्मा बनते हो, इसी जन्म में बन जाते हो। और ब्रह्मा इस जन्म में पक्की आत्मा नहीं बन पाता, इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते। तो जो ब्रह्म के फॉलोअर हैं या ब्रह्मा के फॉलोअर हैं, वो सब ब्रह्म हैं। वो समझते हैं कि ब्रह्म या ब्रह्मा ही भगवान है। और तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि ब्रह्म तो जड़त्वमयी तत्व है। जड़ बुद्धि होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाते। नहीं तो यज्ञ के आदि में ही बाप को पकड़ लिया होता। साक्षात्कारों का अर्थ है चारों तरफ भटकते रहे, उनको अर्थ मिला क्या? भटक भटक कर आखिरी न अपनी गद्दी पर पहुंचे। और जिसे साक्षात्कारों का उनको अर्थ मिला, इतना नशा चढ़ा कि मैं कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। पर जिसके द्वारा नशा चढ़ा उसको पहचानना भी चाहिए ना। बाकी पवित्र रहते हैं, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। बाप को और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जैसे गोया जंगली जानवर ठहरे। ये है ही कांटों का जंगल। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल हैं, इनको कांटों से फूल बनाने वाला बाप है, कांटों से फूल इसी जन्म में बनाता है या अगले जन्म में बनाता है? इसी जन्म में कांटे से फूल बना देता है। इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के कांटे कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, सोलह कला संपूर्ण हो, हम तो पापी कपटी हैं, काम का सबसे बड़ा कांटा हमारे में है। तो अभी बाप कहते हैं, इन काम कांटे पर जीत पहन करके जगत जीत बनो। कहा भी जाता है, काम जीते जगत जीत। बाबा ने कितना बारी कहा है कि जो गीता को जानने वाले हैं वो 5-8 मुख्य श्लोक निकाले। गीता बनाई हुई तो है ना, उस गीता से हम अच्छे अच्छे श्लोकों को उठावे। हमारे पास जो अच्छी गीता को जानने वाले अभ्यासी हैं, जैसे रमेश है, उषा है, सारी गीता कंठ रहती है, परंतु बाबा को ऐसा कोई भी करके नहीं दिखाते हैं। कैसा कैसा करके दिखावे? अरे दूसरे धर्म संप्रदाय वालों ने उसे एक ही गीता की कितनी टीकाएं की है। अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी फिलॉसफी के अनुसार गीता के अर्थ बैठ निकाले, वो तो साफ झूठे अर्थ है। एक के अर्थ का प्रसंग दूसरे से न मिले। यहां तो बाप सच्ची बात बैठ समझाते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा निकले, नाम क्या दिया? उषा और रमेश। हद में उषा रमेश, उन्होंने तो गीता में कुछ किया नहीं। हाँ, यज्ञ के आदि में जरूर गीता बैठ सुनाते थे, गीता के वही पुराने पुराने श्लोक, उन श्लोकों को अर्थ करके समझाते थे। कौन समझाते थे? वही यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व प्रजापिता, जिसे पीयू कहा जाता था, जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा, तब सारी दुनिया मानेगी कि अरे ये तो गीता के बिल्कुल सच्चे अर्थ है। उस गीता की विद्वानों ने 100-125 से भी ज्यादा टीकाएं करके दिखाई है। टैगोर गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, माध्वाचार्य गीता, ढेर प्रकार के अर्थ करके समझाए, और सब प्रकार के अर्थ एक दूसरे से टकराने वाले हैं, तो भेद पैदा कर देंगे। बाप आते हैं तो बताते हैं, बच्चे उस गीता में जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, उन श्लोकों को तुम उठाओ, अभ्यास करो। ऐसा करके कोई दिखाए, बाबा कहते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे गीता से श्लोक निकाल करके भेजो तो फिर बाबा युक्ति बतावेंगे, क्योंकि गीता में ऐसे बहुत श्लोक हैं जिन श्लोकों से ये साबित होता है कि गीता का भगवान साकार नहीं था, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला था। पुराने पुराने जो विलायती लोग हुए हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध थी भारतवासियों के मुकाबले, उन्होंने ये रिसर्च करके निकाला कि पहले गीता कोई निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार कृष्ण के उपासियों ने कृष्ण भगवान वाच शब्द ऐड कर दिया और सारा खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसे ऐसे श्लोक निकाले फिर बाबा युक्ति बतावेंगे उन पर समझाने की कि कैसे कैसे किनको किनको पकड़ो, क्योंकि गीता है ही सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है, ये भगवान का शास्त्र है ना। तो भगवान साकार है या भगवान निराकार है ये क्लियर तो होना चाहिए। अगर भगवान साकार है, देहधारी मनुष्य है, देह में उसकी बुद्धि धरी हुई है, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे दे सकता है? इस देह के बंधन से, दुनिया के बंधनों से मुक्त कैसे कर सकता है? जिसकी खुद की बुद्धि देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मुक्त हुई पड़ी हो, वो ही दूसरों को मुक्ति दे सकता है। जीवन में रहते हुए दुख अनुभव न करे, दुख में भी दुख के वाइब्रेशन को सुख में बदल देवे, खुद भी सुखी हो और संपर्क संसर्ग में संबंध में आने वाली आत्माएं भी सुखी हो जाएं। वो निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बताना पड़े कि साकार मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। देहधारी जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है, देह की प्रति आकर्षित है, चाहे अपनी देह के प्रति चाहे पराई देह के प्रति, वो संसार का कल्याण नहीं कर सकता। तो उन विद्वानों को पकड़ो, ये गीता भगवान का शास्त्र है, उस भगवान से ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है। जो गर्भ से जन्म लेने वाला कृष्ण है उससे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल सकता, वो तो रचना है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की पहली रचना कौन? कृष्ण। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना है, परंतु रचना से वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता बाप को कहा जाता है, उसे कृष्ण को जो जन्म देने वाला है पहले पत्ते को, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्यों का बीज मनुष्य रूप में ही होगा, लेकिन वो बीज निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है। ऐसे निराकारी स्टेज वाले से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। तो ये गीता ही माई बाप है, अच्छी रीति पकड़ना चाहिए, पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। आर्टिकल से भी लिखनी है, फलाने से बात की तो उसने कहा ब्रह्मा भी उतर आवे, तो भी हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वो शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो भक्ति हो गई ना। शास्त्र तो अनेकों ने लिखे हैं, गीता की टीकाएं भी अनेकों ने की है, तो अनेकों से ज्ञान नहीं आता, अनेकों से आती है भक्ति। रावण के 10 सिरों से आती है भक्ति और एक राम से आता है ज्ञान। शास्त्र पढ़ना ही माना भक्ति है। शास्त्र भांति भांति के मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। फिर गीता के श्लोक दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? देखो गीता में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं मैं वेद शास्त्र जप तप आदि से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में श्लोक है ना कि वेद शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं हूं एक और शास्त्र बनाने वाले हैं अनेक, विभेद पैदा कर देंगे। वो विद्वान आचार्य इन बातों का अर्थ तो समझते नहीं है। कहते भी हैं भगवान ने, भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान होकर आना है, मानते भी हैं भगवान को आना ही है, पुरानी दुनिया को नया बनाना ही है, नई दुनिया को तत्व प्रधान और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। दुनिया की हर चीज नई होती है तो सुखदाई होती है, पुराना होता है तो दुखदाई कहा जाता है। 2767 की वाणी का 3रा पेज, जबकि अब पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को ही आना पड़े, पुराने मकान को नया मकान कौन बनावेगा? बाप ही बनावेगा। बाप को कहा ही जाता है, तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना सहज समझाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किनका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, तो इसमें हमारा क्या है? हमको बुलाते ही है बाबा आकर के हमको बरसा दो। कर्म भोग के हिसाब किताब में मेरी तो कोई गलती नहीं, ये हिसाब किताब किसने बनाया? हर आत्मा ने अपने कर्म भोग का हिसाब किताब खुद ही बनाया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बाबा से क्या वर्षा लेना चाहते हो? कहेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने दिया था, परंतु भगवान ने कब ज्ञान दिया था, किस रूप में दिया था, वो किसी को पता नहीं है। सारा मुजहरा इस बात में है कि ज्ञान किसको दिया, किस रूप में दिया, किसको भी पता नहीं है। अभी ये है बैठे हैं, कौन यह कौन बैठे हैं? अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको पता हुआ है कि हम सो था, फिर 84 जन्म भोगे, तो नंबर वन में ये है बताते हैं, मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंख ही खुल गई। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है ना, तुम कहेंगे हमको बाप का सारी षष्ठ चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो आत्मा हूं मेरी आंखें खुल गई। कितना बंडर है, हम आत्मा फर्स्ट हैं और हम अपने को फिर देह समझ बैठे। आत्मा कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। कितने मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए ये अब तुमको पहले ये समझाए देता हूं। क्या पहली बात समझाता हूं, ज्ञान में पहली बात धारण करने की क्या है, मैं आत्मा हूं। अंदर में ये बैठ करके घोटना चाहिए, सवेरे सवेरे उठ करके ये तांत लग जाए, क्या मैं देह नहीं हूं, मैं स्टार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा अपन को न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो बरोबर, हम बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो ये मेहनत करनी है, क्या अपन को आत्मा समझने की, अपनी भ्रकुटी में आत्मा देखने की, यही तुम्हारी तपस्या है। बड़ी तो बड़ी तपस्या क्या है, अपन को आत्मा समझना। यहां बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। बाप कहते हम तुम बच्चों को राजा ही देने आया हूं, आधा कल्प तुमने हमको याद किया। सन्यासी आदि कोई भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरे आधा कल्प के आशिक हो, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है। वो कह नहीं सकते कि मैं तुम्हारा मासूक हूं, नहीं। बाप कहते हैं तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी तो तुम भूल गए हो, कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं कि हाय राम 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 बार बार कहते हैं, परंतु ईश्वर कौन है ये किसी को भी पता नहीं। तो ये सिद्ध करके बताना है कि ज्ञान का सागर पतित पावन बाप है, ज्ञान का दाता है, सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता है, और वो शिव ही है। वो अकेला नहीं आता है, किसके साथ आता है, तीन देवताओं की रचना करता है, उनके साथ आता है, अकेला नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है, तीनों का जन्म इकट्ठा है। तो यज्ञ के आदि से ही ब्रह्मा क्यों प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लेना ये साकार का होता है या निराकार का होता है, जन्म जन्म तो साकार का होता है, जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना। तो यज्ञ के आदि से लेकर 33-40 साल हुए, तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई या सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। तो कहेंगे ब्रह्मा का जन्म हुआ, परंतु बाप कहते हैं मैं अकेला जन्म नहीं लेता, मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, इससे साबित होता है कि यज्ञ के याद में भी तीनों मूर्तियां मौजूद थी। तो देखो सिर्फ शिव जयंती ही नहीं है, ये कहना रांग है। शिव जयंती क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव अकेला कैसे प्रत्यक्ष होगा? वो तो बिंदु है, बिंदु थोड़े ही देखने में आता है। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों मूर्तियां चाहिए, परंतु किसी को भी पता नहीं। जरूर जब शिव बाबा की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी होगी। अभी ब्रह्मा की जयंती है क्या? है? ब्रह्मा की जयंती मनाते हैं कि मरंती मनाते हैं? है? अभी क्या मनाते हैं? अरे तो जब शरीर छोड़ा वो मनाते हैं, जन्म के बारे में तो कोई मनाते नहीं, लेकिन वो भी मनावेंगे। कब? जब शिव बाबा की प्रत्यक्षता रूपी जयंती होगी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की जयंती होगी। शिव की जयंती कुछ मनाते हैं, ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक ये फिर है अलौकिक बात। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक है, इनका तो कुछ भी मानते नहीं है। ये भगवान कह करके याद करते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। शंकराचार्य को बोलो कौन सा ब्रह्मा, तुम कौन से ब्रह्मा के लिए कहते हो कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानेंगे नहीं? कोई तो ब्रह्मा होगा कि वो उतर आए सृष्टि पर तो भी हम मानेंगे नहीं। कौन सा ब्रह्मा है? यही दादा लेखराज ब्रह्मा, ये उतर आया ना, लेकिन कोई ने अभी तक माना नहीं। क्या वह ब्रह्मा उसी रूप से नीचे चला आवेगा? क्या होगा तुम जानते हो? उतरेंगे तो कोई भी नहीं। ये है ब्रह्मा, दादा लेखराज ऊपर चले जावेंगे, परंतु अभी देरी है। पहले से ही बता दिया क्या कि यह ब्रह्मा कहां चले जावेंगे? ऊपर चले जावेंगे, सूक्ष्म बतन, ऊंची स्टेज में, परंतु अभी देरी है। अभी वो टाइम नहीं आया क्योंकि सन 67 की वाणी है। यह लोग अभी तुम्हारे पेच में नहीं आवेंगे। एक भी अगर तुम्हारे पेच में आ जावे तो सभी उनको कहेंगे इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है। थोड़े बहुत तुम्हारी तरफ आ जाते हैं तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, यही बड़े से बड़ा रूला है, और तुम्हारी जीत इसी बात में होनी है। ये नंबर वन भूल है। इस भूल ने सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को झूठा बनाई दिया है। बाप कहते हैं कोई भी शास्त्र से गति सदगति नहीं मिल सकती, सबको पार्ट बजाने आना ही है। बल कहते हैं फलाना ज्योति में ज्योति समाई गया, निर्वाण धाम चला गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान अभी मिलता है। अभी तक तुम जो सुनते चले आए हजारों वर्ष से, वो पुराना ज्ञान सुनते चले आए या नया ज्ञान सुनते चले आए? वो ही शास्त्रों का पुराना पुराना ज्ञान सुनते चले आए। पुराने ज्ञान से दुनिया पुरानी बनेगी या नहीं बनेगी? पुरानी बातों से, पुराने रीति रस्म रिवाजों से दुनिया पुरानी होती जाती है। मैं आता हूं तो नई बातें बताता हूं, तो ये नया ज्ञान अभी मिलता है फिर प्राय लोप हो जाएगा। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है, बाप कहते हैं वो नास्तिक है, अज्ञानी है, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बाप आया हुआ है और उनको पहचान नहीं है, जानते नहीं है, तो कहेंगे अज्ञान अंधकार में अंधे। ज्ञान से होता है दिन और भक्ति होती है रात। शिवरात्रि का अर्थ कोई थोड़े ही जानते हैं, इसलिए उनकी होली डे भी उड़ाई दिया है। अभी तुम जानते हो, बाप आते ही हैं सभी की ज्योति जगाने, सबका कल्याण करते हैं। तुम ये बत्तियां आदि जगावेंगे, समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। 27/67 की वाणी का चौथा पेज। अब तुम तो जगाते हो, जो बत्तियां जगाते हो वो अर्थ सहित जगाते हो, परंतु वो लोग समझेंगे नहीं। तुम्हारे भाषण से भी पूरा समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम खुद अभी बंदर से मंदिर लायक बने नहीं हो। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, तुम्हारे ऊपर भी बीच बीच में रावण, माया रावण हावी हो जाता है, तो किसका राज्य है? किसका राज्य कहेंगे? हमारे ऊपर भी माया रावण हावी हो जाता है। तुम भी महसूस करते हो कि पहले तो हम बंदर से भी बदतर थे। बंदर में 5 विकार जोरदार होते हैं। आज के मनुष्यों में भी देखो कितने विकार हैं। बंदर का कभी पेट फाड़ करके बच्चे नहीं निकालते हैं, और मनुष्य का पेट फाड़ करके बच्चे निकालते हैं। जैसे बिच्छुनी होती है ना, तो जब बच्चे पैदा करती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसका पेट फाड़ करके बाहर निकलते हैं। आजकल के बिच्छू बच्चे भी क्या हैं? बिच्छू टंडन जैसे हैं। आजकल तो माताओं के पेट चीर करके बच्चा निकालते हैं। वहां सत्युग में देखो कितना अच्छा जन्म होता होगा, मां को भी तकलीफ नहीं और बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं। वहां होता ही है गर्भ महल, और यहां होती है गर्भ जेल। ओम शांति।